नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय जी, आपका स्वागत है।
नमस्कार।
तो बहुत उत्साह भरा दिन है, आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इस वर्ष पद्म पुरस्कार से अलंकृत होने वालों में खेल जगत की कई हस्तियों के नाम शामिल। विजय अमृतराज को पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित होंगे रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर समेत 7 खिलाड़ी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच गुवाहाटी में जारी। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में कल का 16वां मैच रोमांचक होने की उम्मीद, और कल रात के मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल यूकी भांबरी डबल्स प्री क्वार्टर खेलेंगे, और खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में चंडीगढ़ आइस हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा। तो वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार पाने वालों में भारतीय खेल जगत की कई हस्तियों के नाम शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी आज की गई है।
इस साल खेल जगत से पद्म भूषण पाने वाले विजय अमृतराज इकलौते खिलाड़ी हैं। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जबकि पद्मश्री चौथे स्थान पर आता है। अमृतराज को इससे पहले 1983 में पद्मश्री और 1974 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, जो भारतीय खेलों में उनके लंबे और अहम योगदान को दर्शाता है। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर के अलावा भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार और भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इनके साथ बलदेव सिंह, भगवान दास, राय कवार और के पासनीवेल को भी खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो कितना बेहद कह सकते हैं बेहद खास दिन है आज हमारे खिलाड़ियों के लिए भी और पूरे खेल जगत के लिए, और इस तरह का जब सम्मान मिलता है तो जो युवा खिलाड़ी हैं, नए नए खिलाड़ी, उनको कितनी प्रेरणा मिलती होगी इनसे।
बहुत प्रेरणा मिलती होगी जया, पर आप देखिए कि जब खिलाड़ी अपना खेल का जीवन शुरू करता है तो उसकी उम्मीद होती है कि किसी स्टेज पे जाके उनको सम्मान मिलेगा और ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेंगे, और कईयों को बहुत देर से मिलता है, कईयों को जो है मरणोपरांत मिलता है। लेकिन इस अवार्ड के बहुत मायने हैं, इसके लिए जितनी मेहनत करता है खिलाड़ी वो डिजर्व करता है ऐसे बड़े अवार्ड्स। और मुझे बड़ी खुशी है इसमें जय कि विजय अमृतराज, इनका इतना बहुत बड़ा योगदान रहा है टेनिस के लिए। सविता पूनिया, अगर आप देखें, गजब की गोलकीपर, उन्होंने बहुत डिजर्विंग उनको मिला है। और रोहित और हरमनप्रीत को तो लोगों को उम्मीद थी कि इस बार उनको जो है पद्मश्री मिलना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप विनर्स हैं।
बिल्कुल। और हरमनप्रीत कौर के लिए भी आपने बात की, तो इनके लिए 2025 का जो साल था वो बेहद खास रहा था, जब उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने घरेलू सरजमी पर पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। कितना खास मोमेंट था वो।
बहुत खास मोमेंट, अगर आपको याद हो भारत 3 मैच हार चुका था और लग रहा था कि शायद सेमीफाइनल भी ना पहुंचे, और वहां से फिर उनको एक रास्ता मिला। शफाली ने रास्ता दिखाया, जमीमा ने रास्ता दिखाया, और अल्टीमेटली जो है विमेंस क्रिकेट के लिए, मैं कहता हूँ महिला क्रिकेट के लिए, बहुत बड़ा दिन था वो।
बिल्कुल। और इसी तरह रोहित शर्मा ने भी 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन वनडे क्रिकेट में भारत की अभी भी बहुत अहम खिलाड़ी हैं, और उनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। कई इसके अलावा जो पूर्व कुश्ती कोच हैं और उनको भी मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने आज पद्म पुरस्कार 2026 की सूची जारी की है, जिसमें कुल 131 नागरिक सम्मानों को मंजूरी दी गई है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस सूची में खेल, कला, सिनेमा, साहित्य, सार्वजनिक सेवा और अन्य क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा है कि हमारे युवा खिलाड़ी देश में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बना रहे हैं। राष्ट्रपति ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने देश के समग्र विकास में महिलाओं की भागीदारी का विशेष उल्लेख किया और कहा कि खेलों के क्षेत्र में देश की बेटियों ने विश्व स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
पिछले वर्ष नवंबर में भारत की बेटियों ने ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप और उसके बाद ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचा है। पिछले ही वर्ष चेस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत की ही दो बेटियों के बीच खेला गया। ये उदाहरण खेल जगत में हमारी बेटियों के वर्चस्व का प्रमाण है।
बिल्कुल, और अब जब हम क्रिकेट की बात कर रहे थे तो फिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो चल रहा है हमारा तीसरा T20 क्रिकेट मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में, उसकी बात कर लेते हैं, जहां अंतिम ओवर खेल रहा है न्यूजीलैंड और ताजा समाचार मिलने तक यानी 19 ओवर और 5 गेंद में 9 विकेट पर 152 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 की बढ़त पर है, तो भारतीय टीम इस मैच में 2 बदलावों के साथ उतरी है। क्या कुछ देखने को मिलेगा?
हाँ जी हाँ, देखिए बदलाव यह है कि एक्सपेरिमेंट कर रही है टीम। T20 वर्ल्ड कप आपके सामने है, अगले महीने से शुरू होने वाला है। पर यहाँ पे मैं कहूंगा, अगर आपको याद हो नागपुर के मैच में अभिषेक और रिंकू ने जो बैटिंग की थी उससे एक ड्रेसिंग रूम में बड़ी खुशी की लहर थी, और रायपुर में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, खास करके कप्तान सूर्य कुमार यादव के कहीं रन नहीं बन रहे थे, तो उन्होंने जो है अपना फॉर्म दिखा के एक टीम में मैं कहूंगा बड़ा कॉन्फिडेंस जगाया है, और ये अच्छा संकेत है अगले महीने जो वर्ल्ड कप शुरू होगा उसके लिए।
बिल्कुल, और अभी न्यूजीलैंड के सारे ओवर खत्म हो गए हैं। निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन बने हैं, यानी कि भारत के सामने अब 154 रन का लक्ष्य है। हालांकि भारत 2-0 की बढ़त पर है, तो ऐसे में भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर श्रृंखला पर कब्जा करना जरूर चाहेगी। अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की, जहां वडोदरा में महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग के 15वें मैच में कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया था। बेंगलुरु के 110 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 15 ओवर और 4 गेंद में 111 रन बनाकर मैच जीत लिया था। अब 16वां मैच कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। यह मैच वडोदरा के BCA स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। एक नजर कल की संभावनाओं पर।
लगातार 5 मैच में जीत हासिल करने के बाद पिछले मैच में हार के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मजबूत स्थिति में है। RCB को कल दिल्ली कैपिटल से इस सत्र की पहली हार का सामना करना पड़ा था, इससे उसके विजय अभियान थम गया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि टूर्नामेंट की लीग चरण के आखिर में परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। इस हार के बावजूद RCB की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। उसने अभी तक प्रत्येक विभाग में निरंतरता दिखाई है और वे पिछली पराजय को भूलकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होगी। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस को अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उसे जल्द से जल्द वापसी करनी होगी। मौजूदा चैंपियन टीम लगातार 3 मैच हार चुकी है, जिससे उसका अभियान रुक गया है और प्लेऑफ पहुंचने की उसकी उम्मीदें खतरे में पड़ गई हैं। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैम्प।
रोमांचक होने की उम्मीद है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो कि अपने जीत के मोमेंटम को वापस से लाने की कोशिश करेगी। वहीं पे मुंबई इंडियंस, जिसकी निरंतरता में काफी कमी देखी गई है।
मुंबई इंडियंस को तो देखिए बहुत कम चांस है प्लेऑफ में जाने के लिए, कुछ भी हो सकता है मानता हूं, लेकिन 4 पॉइंट है केवल और जो है 2 ही मैच बचे हैं उनके पास, तो मुश्किल होगा। लेकिन RCB ने जो गेम दिखाया, जिस जैसे डोमिनेट किया उन्होंने, और खास करके अगर आप वहां देखें हरमनप्रीत, हालांकि 240 रन बनाए उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन टीम का जो मैं कहूंगा जिसे कहेंगे टूर्नामेंट में जगह, वो आगे के लिए पक्की नहीं कर पाई है वो अभी तक।
बिल्कुल, और अभी टूर्नामेंट बिल्कुल लीग चरण के आखिरी में है, तो जैसा कि हमने कल देखा कि किस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने RCB को हरा दिया, तो क्या अब लग रहा है कि परिस्थितियां बदल सकती है?
क्यों नहीं बदल सकती? टी ट्वेंटी की खासियत यही है कि मैच आपको लग रहा होगा कि एक टीम जीत रही है आराम से और पता लगा कि दो ओवर में मैच पलट जाता है। आज भी देखिए, हालांकि हमें लग रहा है कि न्यूजीलैंड ने कोई लक्ष्य बड़ा नहीं दिया है, पर कोई पता नहीं कि मैच कहाँ पलट जाए। अगर दो तीन विकेटें जल्दी गिर जाएं तो मैच, टी ट्वेंटी की यही खासियत है।
बिल्कुल। और अगर हम अभी WPL की बात कर रहे हैं तो WPL में कल का मुकाबला दो ऐसी टीमों के बीच है जिनकी स्थिति इस समय बिल्कुल अलग अलग है। एक टीम अपना दबदबा फिर से कायम करना चाहती है जबकि दूसरी टीम मुकाबले में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि क्रिकेट प्रेमियों को कल बेहद रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। और विजय जी, इस बीच हम बात कर लेते हैं जो काफी अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है भारत में या फिर पूरे मतलब क्रिकेट जगत में ही कह दे तो, ICC ने जो अपना फैसला सुनाया कल कि बांग्लादेश की जगह पर वो स्कॉटलैंड को शामिल करेगा। तो बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आने से मना किया था, लेकिन ICC ने ये साफ कर दिया कि अंतिम समय में इस तरह के बदलाव ICC की नीति नहीं है। और इसी बीच पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए कहा था कि शायद वो बहिष्कार कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो प्रमुख थे नकवी, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान सरकार पर ही पूरा निर्णय निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेगी, टूर्नामेंट में विश्व कप प्रतियोगिता में पाकिस्तान खेलेगा या नहीं। और इन्हीं अटकलों के बीच आज पाकिस्तान ने अपनी 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है, तो इससे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान भी विश्व कप में खेल रहा है। इसके साथ ही ये साफ होता है कि ICC ने जो फैसला लिया है उसमें किसी भी बोर्ड को अपनी मन मर्जी करने की अनुमति नहीं देता है।
नहीं देगा, क्योंकि जो जहां तक सुरक्षा की बात है, ICC को भारतीय सरकार ने आश्वासन दिया होगा कि आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। और ICC अपने आप से नहीं निर्णय नहीं लिया है, उनकी कमेटी है जो देखती है ये सब, और तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई उनको थ्रेट नहीं है बांग्लादेश के खिलाड़ियों को, ना उनके पत्रकारों को, ना ऑफिशियल्स को, ना दर्शकों को। और उन्होंने जो है निर्णय लिया है तो खामियाजा भुगतें।
बिल्कुल। अब 8 साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, जहां भारत के यूकी भांबरी और स्वीडन के आंद्रे गोरांसंस की जोड़ी कल डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में मुकाबला खेलेंगे, और जहां भारतीय एंड स्वीडिश जोड़ी का मुकाबला ऑरलैंडो लूज और राफेल माटोस की ब्राजीलियन जोड़ी से होगा। इससे पहले भांबरी और गोरांसन की जोड़ी ने कल मैक्सिको के सेंटियागो गोंजालेज और नीदरलैंड्स के डेविड पेल की जोड़ी को हराया था। तो जिस तरह से काफी जो भीषण गर्मी चल रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान, और वो उन्होंने जिस तरह का मैच दिखलाया कल, तो अब आगे की मैच में इन्हें क्या लगता है कैसी चुनौती मिलेगी? एक तो काफी लंबे समय के बाद किसी भारतीय ने इस तरह से जाके प्रीक्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है।
आप जितने अपने प्रतिद्वंदी के बारे में सोचते हैं उतना भी मौसम के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि और ये पहली बार नहीं है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, हमेशा ये शिकायत रही है कि भीषण गर्मी में उनको खेलना पड़ता है। और जहां तक यूकी भांबरी है, बहुत बढ़िया होगा अगर वो कल का मैच अपना निकाल के आगे बढ़ते हैं।
अब बात खेलो इंडिया की, जो कि लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया है। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के छठे दिन यानी आज आइस हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल खेले गए। कैसे रहे आज के मैच, जानते हैं हमारी लेह संवाददाता से।
हिस्ट्री वॉज मेड बाई चंडीगढ़ मेन्स आइस हॉकी टीम बाई डिफीटिंग यूटी लद्दाख टीम बाई 3-2 इन द सेमीफाइनल्स एट द NDA स्टेडियम ऑन संडे। चंडीगढ़ स्टार्टेड प्लेइंग आइस हॉकी इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स ओनली इन 2025। चंडीगढ़ डिजर्व्ड एवरी बिट ऑफ दिस विक्ट्री एंड इट वॉज थ्रू पैशन एंड ग्रिट ऑल थ्रू। चंडीगढ़ विल प्ले विद आर्मी टीम इन फाइनल्स ऑन रिपब्लिक डे फॉर स्पोर्ट्स कैन विद जिनांगमो फ्रॉम लेह लद्दाख।
तो खेलो इंडिया जिस तरीके से पूरे हमारे युवा खिलाड़ियों को मौका दे रहा है, निखार रहा है, कितनी बड़ी पहल कह सकते हैं हम सरकार की इसको?
बहुत बड़ी पहल, और खास करके आप देखिए जैसे विंटर स्पोर्ट्स को उन्होंने बढ़ावा दिया है और स्कूल्स में बढ़ावा दिया है बच्चों को कि आप आए खेलें। ये मुझे लगता है कि ये टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो भारत का जो स्तर ऊपर गया है उसी को बरकरार रखने की कोशिश है।
बिल्कुल। और इसी के साथ हम बता देते हैं कि भारत की उभरती हुई स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह को न्यूयॉर्क में खेले जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्क्वाश टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जापान की सतोमी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अनाहत ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और वाकई में ये कड़ा मुकाबला था। लेकिन अब श्रोताओं समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का, कल इसी समय फिर मिलेंगे ढेर सारी नई खबरों के साथ। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड। नमस्कार।